सुनो सुनो ब्रह्मा बाबा की मंगलकारी दिव्य कहानी दिव्य कहानी। सुनो सुनो
जिसको सुनकर ज्ञानी भी जिसको सुनकर ज्ञानी भी बन जाता ज्ञानी।
सुनो 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 ब्रह्मा बाबा की मंगलकारी दिव्य कहानी दिव्य कहानी।
ओम शांति। तो हम सब ये गाना जो बाबा का भी बाबा की यादों में खोने का जो बज रहा था, हम सभी उसी में खो गए थे, ऐसा तो मैं समझती हूँ सबको अनुभव हुआ होगा। तो हमको भी जैसे ही ये आवाज कानों में आई तो बाबा की आंखें सामने से दिखाई देने लगी और उस आंखों में बाबा के जादू ही भरा रहता था सदा ही। जब भी उठो बैठो चलो फिरो खाओ पियो हर समय जैसे कि वैरायटी अनुभव होते थे। तो इसलिए बाबा में हम सब ये शब्द सुन करके जैसे खो जाते हैं। और जो भक्ति में भी कहते थे, हमने तो इस जीवन में कोई भक्ति वक्ति तो की नहीं है क्योंकि बचपन से ही आ गए, और बचपन में जब आना हुआ वो भी मम्मा बाबा के साथ ही यहाँ आना हुआ। उस समय आधी टिकट मेरी लगी थी यहाँ आने के लिए। और ये जो आप सामने पहला चित्र देख रहे हैं हॉल के अंदर, जिसमें रमेश भाई और बाबा बीच में खड़े हैं और साइड में भाव विश्वकिशोर खड़े हैं। तो ये विश्वकिशोर भाई जो है, बाबा कहीं भी जाते थे तो हमेशा वो विश्वकिशोर भाई जी बाबा के साथ ट्रेन में जाते थे। तो जब दिल्ली वो आए और थोड़ा बहुत आजू बाजू जो टूर किया, उसके बाद फिर दिल्ली में आए तो हम वहां पहुंचे हुए थे तो बाबा ने कहा ये बच्ची जो है ना मेरे साथ चलेगी, कहा ये बच्ची जो है मेरे साथ चलेगी। तो भाऊ ने कहा बाबा ये इसके तो टिकट की जरूरत नहीं है, ये तो बिना टिकट चल सकती है क्योंकि बहुत छोटी है ये। तो बाबा ने कहा नहीं ये सेफ रहेगी, आधी ही टिकट ले लो। उस समय दिल्ली से यहाँ आने के 4 रुपए लगे थे आधी टिकट के और 8 रुपए लगे थे पूरी टिकट के, तो हमारे तो 4 ही लगे, आधी टिकट ली तो 4 रुपए में यहाँ से मैं पहुंची हूँ यहाँ पर। तो जब हम स्टेशन पे पहुंचे तो उसी समय भूरी दादी, जो अपने को सभी आप देखते भी रहते हैं, वो बहुत बुढ़ी है, खाना पीना बांट नहीं सकती है लेकिन एक मूर्त बन के बैठती है, सबको दृष्टि देती रहती है। तो उस समय वो 60 वर्ष की थी, जैसे मैं हूँ ना अभी, ऐसे समझो थी। लेकिन उस समय का खाना पीना बहुत शक्तिशाली था। आज की दुनिया में तो इतनी वो शक्तिशाली चीजें नहीं है ना केमिकल से, क्योंकि बहुत संख्या बढ़ गई है संसार में, केमिकल से सब तैयार हो रहा है, फटाफट खेतों में डाल रहे हैं केमिकल फलों में उसमें, तो शरीरों में वो ताकत नहीं रही है जो पहले थी। तो उस समय में तो काफी ताकत थी, तो ये समझो थे भी थोड़े से लोग यहाँ पर। तो वो स्टेशन पे जब आई तो बाबा को जल्दी जल्दी बोला बाबा बाहर एम्बेसेडर गाड़ी खड़ी है और बस भी खड़ी है गवर्नमेंट की, आपके साथ कितने लोग हैं? कहा बच्ची मेरे साथ बहुत लोग हैं लेकिन तुम क्या करो एम्बेसेडर में ये बच्ची चलेगी जो मेरे साथ है, और मम्मा चलेगी और ईशु दादी जो दादी के साथ अभी रहती है, साड़ी पहनती आप लोग देखते होंगे, तो वो और उनके साथ समझो भाऊ विश्वकिशोर। तो भाऊ विश्वकिशोर आगे बैठे, ईशु दादी भी आगे बैठी और ड्राइवर था, और पीछे मम्मा बाबा के बीच में मुझे बिठाया गया। तो जब मैं वहां से यहाँ आई तो मुझे यहाँ का जो है ना सारा माहौल जो है ना वो बहुत मना बहुत परेशान करने लगा यहाँ का, क्योंकि ये जो रोड है ना ये स्नेक माफिक है, आप जब अभी नीचे उतरेंगे ना तो देखना ये सांप की तरह घूमता है रोड, तो वो मुझे बहुत वॉमिट तो नहीं आई लेकिन मुझे थोड़ी बेहोशी सी हो गई और बहुत जैसे मैं ना अंदर बेचैनी थी, तो बाबा ने फिर मुझे अपनी गोदी में सुला दिया और मम्मा को भी कहा तुम भी इसको अपनी गोदी में ले लो। तो ऐसे करके पूरा टाइम समझो मैं यहाँ गोदी में ही सोती सोती आई एम्बेसडर कार में। तो फिर बाबा गोदी में ही उठा करके फिर अपने कमरे में गद्दी पे मुझे सुलाया। लेकिन ये सब आप कैसे कहते जब तुम बेहोश थी तो तुमको कैसे पता, लेकिन जब मैं होश से उठी तो मैं देखा मैं गद्दी से उठ रही हूँ, रजाई वजाई मुझे पड़ी हुई है बाबा की। तो इस तरीके से फिर मैं समझो। फिर तो वैसे मैं हूँ पंजाब की, पंजाब में दिल्ली के पास अम्बाला है, वहां से बाबा मुझे, क्योंकि बाबा अम्बाला में गए थे, तो जब अम्बाला में गए तो उन दिनों में जैसे अभी हमारी सेवाएं जो है ना बहुत बढ़ चुकी है ना, अनेक प्रकार की विंग्स निकल चुकी हैं, हर एक अपनी अपनी विंग्स लेकर के और बाबा का प्रचार कर रहे हैं डिफरेंट तरीके से। उस समय ये सब बातें नहीं थी, उस समय खाली सब बाबा मम्मा की, उसमें भी बाबा की दृष्टि में इतना जादू था जो कोई बाबा की दृष्टि लेते थे और ध्यान में चले जाते थे। तो हमारा भी ऐसा ही प्रोग्राम रहा, तो बाबा की दृष्टि लेते ही मैं ध्यान में चली गई पहली बार। तो फिर बाबा के लैप में ही मैं पड़ी रही 2-3 घंटे, बाबा सबसे मिलते रहे और फिर मम्मा की गोद में हमको सुला दिया। फिर जब मैं जागी तो बाबा मुझे कहते हैं कि बच्ची क्या देखा। अब मैं पंजाबी के सिवाय और कुछ भी मुझे कोई भाषा नहीं आती थी, अब मैं बोलूं कैसे, और वो भी मैं बाबा के आगे कैसे बोलूं। मुझे तो अंदर बाबा के लिए बहुत जैसे कि अंदर रिस्पेक्ट होता था कि इतनी बड़ी हस्ती है, मैं उसके आगे कैसे बोलूंगी। फिर मम्मा को ड्यूटी लगाई कि मम्मा इनसे पूछना तुम क्या देखा इसने। तो फिर मम्मा ने मेरे से पूछा, लेकिन मैं हिंदी नहीं बोल पाती थी, तो फिर धीरे धीरे समझो मैं जैसे जैसे समझदार बनती गई तो काफी समय ये जैसे मेरा पाठ चला, सूक्ष्म लोक से यहाँ आने का, परम धाम जाने का, इस तरीके से ये सब काफी समय तक चला। फिर लेकिन ये सब संदेश वगैरह मैं कभी नहीं लाई हूँ, जैसे आप मैसेज मुझे दो ये सब मैं आके आपको सुनाऊं, ऐसा काम मैंने कभी नहीं किया। लेकिन सीनरियां देख के, बाबा को देख के, भोग स्वीकार करा के बस इतना आ जाती थी, ये सब मेरा पार्ट होता था। तो फिर उसके बाद बाबा ने क्या कहा कि बच्ची अभी जो है ना तुमको मैं अपने साथ ले चलूंगा। तो ऐसे करके हमको वहां अम्बाला में चिट्ठी आई खास, तो सारे सेंटर वाले देखने लगे ये चिट्ठी, यहाँ कोई बैठा ही नहीं है और चिट्ठी इतनी बाबा ने प्यार से भेजी, आखिर है कौन ये। तो फिर किसी को भी पता नहीं था क्योंकि उस चिट्ठी में लिखा था कि इसको तार समझ के उसकी मम्मी या जो भी है वो उनको छोड़ के जाए, क्योंकि बाबा कल माउंट में जा रहे हैं इसलिए उसको साथ में ले जाएंगे। तो इस तरीके समझो मैं यहाँ आई। तो जब मैं यहाँ आई तो यहाँ आते पहले तो मेरा दिल्ली में ही थोड़ा टेस्टिंग लिया, मम्मा ने कहा कि तुम क्या करोगी वहां जा करके। और ये तो मम्मा को पता नहीं था कि बाबा के साथ इसकी बातचीत हो गई है, लेकिन फिर भी जैसे किसी ने मुझे, कोई दादी थी उसने मुझे कहा कि तुम मम्मा से भी छुट्टी ले लो। तो मम्मा दूसरे कमरे में थी दिल्ली में, तो कहा क्या करोगी वहां जाके, वहां तो बहुत बड़े बड़े सांप है, जंगल है, शेर है, चीते हैं, तुम तो छोटी हो डर जाओगी, तुम तो वहां रह नहीं सकोगी, और तुम तो इतनी छोटी हो, तुम तो डरपोक हो, कैसे तुम वहां रहोगी। तो मैंने कहा नहीं मम्मी, मैं मम्मा को कभी मम्मा नहीं कहा, हमेशा मम्मी बोला, मम्मी नहीं मैं चलूंगी। ऐसे करके फिर समझो मैं आ गई। तो यहाँ थोड़े दिन तक हमको हमारी सेवा के लिए वही जो माता जिसकी मैंने शुरू में बताई बात, भूरी दादी, वो हमारी सेवा में थी, क्योंकि मेरा सिर धोना है, मेरे जो भी कपड़े अलमारी में रखने करने हैं, तो वही समझो मेरी सेवा करती थी। तो फिर धीरे धीरे मैंने उसके, मेरे में बाबा ने एक ऐसी शक्ति भरते गए, पहले तो बिल्कुल जैसे भोली थी एकदम, यानी बाबा मुझे हमेशा कहता था बुद्धू इधर आओ, मीठी बुद्धू इधर आओ, नाम ही कम लेता था, नाम लेता ही नहीं था। वैसे भी बाबा किसी भी बच्चे का नाम नहीं लेता था, चाहे दादियां हो चाहे भाई हो, सबको बच्चे मीठे बच्चे, बच्ची मीठी बच्ची, इधर आओ बच्चा इधर आओ, ऐसे करके बोलते थे, तो नाम किसी का भी नहीं देते थे, तो बाबा को आदत थी वो सारी। तो फिर मुझे कहते हैं, मैं ठीक बोल रही हूँ ना, फिर मुझे कहते हैं कि बच्ची अभी मैंने फिर मैंने बाबा को एक दिन कहा, मैंने कहा बाबा मैं सब आप ही कर लूंगी। कहा अच्छा तुम इतनी होशियार हो गई हो। तो कहा जी बाबा। तो फिर कहा तुम क्या सीखोगी? मैंने कहा जो आप मुझे बोलोगे वो ही मैं करूंगी। तो फिर मुझे बाबा सोचते थे अब ये छोटी सी आई है, अब इसको कुछ आता तो है नहीं, एकदम बुद्धू प्लेन पेपर आया है, कागज जरा भी इसमें दाग नहीं है, अब मुझे इसको सब सिखाना पड़ेगा। तो फिर मुझे दौड़ाता था, और यहाँ उस समय 12-15 लोग थे, ज्यादा नहीं थे, उसमें भी 6-8 तो बुड्ढे थे, यहाँ उसमें भी सब बहनें ही थी, ज्यादा भाई तो 2-4 थे, ज्यादा नहीं थे। तो अब क्या करें? तो फिर बाबा मुझे सब काम में दौड़ाता था, 2-2 घंटे बाद मेरी ड्यूटी बदलती थी ताकि ये सीख ले वे सब कुछ। और कोई मैं समझती हूँ ऐसी डिपार्टमेंट होगी जो मैं नहीं गई हूँ, सब डिपार्टमेंट मैंने सीखी अच्छी तरह। तो फिर उसके बाद हमको कहते हैं बच्ची तुम जो है अभी ऐसा करो कि वो फलाना व्यक्ति आ रहा है, उसको तुम ना ऐसे ऐसे समझाना, टिकलू टिकलू भाषा में, ज्ञान की टिकलू टिकलू करना। बाबा तुमको जितना बताता है ना उतना ही टिकलू टिकलू करना, उसके ज्यादा नहीं बोलना। अगर कोई तेरे से प्रश्न पूछे तो डरना नहीं, बड़े बेधर होके, क्योंकि बाबा का तुम पैगाम देने जा रही हो ना, तो डरना नहीं तुम बिल्कुल भी। टिकलू टिकलू करना और कहना कि बस मुझे अभी इतना ही बताया है, आपका कोई प्रश्न होगा ना फिर मैं कल पूछ के फिर आपको बताऊंगी। तो डर से जवाब नहीं देना। फिर मैं दौड़ी दौड़ी बाबा के कमरे में जाती थी, तो बाबा कहते मीठी बच्ची आ गई, मैं सीधी जाके बाबा की गोद में बैठ जाती थी। तो कहा आ गई बच्ची? मैंने कहा जी बाबा। तो कहा अच्छा तो अभी तुम जो है ना ऐसे रोज मैं तुमको भेजता रहूंगा कभी कहाँ। तो इस तरीके से फिर एक ऐसे कोई गेस्ट आए तो कहा इनको तुमको खाना खिलाना है, तो खाना खिलाते समय तुम क्या करना कि पहले तो टेबल पे उनको खाना खिला देना, फिर खाना खिलाते फिर उसके बाद क्या करना। उस समय हमारे पास 3 चित्र थे, एक ये झाड़ था, त्रिमूर्ति था और गोला था। तो वो कहते थे टेबल पे बिछा दो और वहीं बैठ के इनको ये ज्ञान दो, आज इस चित्र पे बताओ, कल दूसरे पे, परसों तीसरे पे। फिर कोई क्वेश्चन करे तो उनको कहना कल मैं बताऊंगी आपको, पहले ये जितना मैं आपको दे रही हूँ इसको आप आज हजम करो, फिर मैं कल आपको इसके बारे में बताऊंगी। कल फिर मैं आपसे पूछूंगी जो मैंने आज आपको बताया है, कल फिर मैं आपसे पूछूंगी। इसी तरीके से फिर उनसे बातें होती थी। फिर कहते थे कि बच्चे ये अभी बच्चे आ रहे हैं तो ये हॉल तैयार हुआ है, इसमें सारे बर्तन लगाने हैं। तो फिर यहाँ सब बर्तन लगाते थे, फिर जो भी आए करे उनको बाबा के साथ, समझो गुरुवार गुरुवार जब भोग ब्रह्म भोजन होता था तो यहाँ पर बैठ करके सबको बिठाना है और फिर सबको सर्व करना है। तो इस तरीके से और भी होते थे साथ में, तो मतलब इस ढंग से बाबा। फिर एक बार क्या हुआ, फिर बाबा के मैंने बाबा को कहा कि बाबा मुझे पढ़ना तो आता नहीं है, अब मैं मुरली कैसे पढ़ूंगी। तो फिर एक दिन ईशु बहन को टाइफाइड हो गया, 15 दिन वो बेड पे थी। तो फिर बाबा ने कहा बच्ची तुम ऐसा करो, अभी ईशु बहन को हो गया टाइफाइड, उसकी ऑफिस खाली है, उसकी कुर्सी भी खाली है, टेबल भी खाली है, तुम वहां आ जाओ, बाबा तुमको हिंदी सिखाएगा। फिर विश्व रतन दादा को बुलाया और उसको कहा इसको हिंदी सिखाओ। फिर हिंदी सिखाई, फिर हिंदी सिखा करके नहीं मतलब ये तो वो बता रही हूँ ना शॉर्ट में सब, क्योंकि एक ही दिन में सब सुनाना है ना, घड़ी घड़ी तो चांस बताती हूँ। एक मास समझो कि हिंदी सीखने में लगा, तो फिर हिंदी ऐसे सीखी। तो फिर उसके बाद जब हिंदी सीखी तो बाबा रात को आते थे क्लास में तो मुझे अपने साथ ले आते थे, कहते थे बच्ची बाबा के साथ बिल्कुल बैठना, तो मैं बैठ जाती थी। फिर उसके बाद कहते थे अभी जो बाबा तो फास्ट बोलेंगे लेकिन तुम लिखना, गलत सही सब लिखना, फिर उसको वो करके रफ से फिर मेरे पास ले आना। फिर उसके बाद मेरी मात्राएं ठीक करते थे। फिर धीरे धीरे फिर कहा कि अभी तुमको मैं ये रात्रि क्लास जो है ना ये सेंटरों पे जाता है, आधे पेज का है ये, फिर तुम्हारे से लिखवाऊंगा। फिर मुझे इतनी मोटी पेंसिल दी, लकड़ी की, इतनी बड़ी लकड़ी की पेंसिल थी और इतनी मोटी उसकी आगे की थी और कागज भी इतना मोटा था। तो एक लाइन लिखने में मुझे 10 मिनट लगते थे और आधा कागज लिखने में 3 घंटे लगते थे। फिर वो साइक्लो स्टाइल मशीन के ऊपर कागज चढ़ता था, फिर बाबा उसमें अक्षर देखते थे, फिर उसके कहा कि ये बच्ची के तो अक्षर मोती जैसे हो गए हैं, अब इससे मुझे बहुत बड़ी सेवा लेनी है। फिर सब सेंटरों पे वो मुरली वो करके मना फिर लिफाफों में डाल करके बेचते थे। उस समय विश्व रतन दादा और ये लच्छू बहन जो है, ये दोनों समझो मुरली डिपार्टमेंट में थे। फिर लिफाफों में समझो डलवाया मुझे, डलवा करके उस समय सेंटर अभी 15-20 ही थे, ज्यादा नहीं थे। फिर धीरे धीरे बढ़े तो वो मेरे से लिफाफे की ट्रेनिंग दी, कैसे डालना है, कैसे मोड़ना है, कैसे धागा बांधना है, ये सब समझो किया। फिर स्टैंप कैसे लगानी है, फिर ये समझो। तो कहा देखो बच्ची तुम्हारा सारे विश्व बेहद में चली गई लिखाई, कितना तुमने मेहनत किया, उसका बाबा ने देखो एडवांटेज लिया कि सबको सिखा दिया, मना सबके पास पहुंच गया तुम्हारा खजाना। तो इस तरीके से हिंदी सीखी, फिर सिंधी सीखी, तो सिंधी सीखने में थोड़ा टाइम लगा, वो भी विश्व रतन दादा ने सिखाई। तो मतलब बाबा को रहता था ये ऑलराउंडर बने। फिर मुझे सिलाई सिखाई गई, फिर मैंने सिलाई सीखी थोड़ी, क्योंकि यहाँ टेलर डिपार्टमेंट नहीं था, तो ये नेपाली शालें जो है ना, ये हम लोगों ने स्टार्ट की बनानी। तो इस तरीके से ये, फिर इधर ये जो निर्वैर भाई वाला ऑफिस है, इसके पास में दूसरा कमरा था, वो टेलर डिपार्टमेंट था और एक मुरली डिपार्टमेंट था। तो इस तरीके से ये फिर तो बढ़ता गया बाबा का काम बहुत, तो फिर ये तो सब छोटे बनने लगे ना सब, तो फिर दूसरे करने पर अब तो बेहद सागर है हमारा, बेहद बाबा सागर है, तो इसलिए सागर की तरह हमारा काम हो रहा है अभी, क्योंकि बाबा ही सागर है। ओम शांति। तो ये भी बाबा की याद की बातें हो रही हैं, बाबा के लव में सब डूब गए, से 9:30 का गाना भी भूल गए, ऐसे कहेंगे ना। फिर उसके बाद बाबा के आगे, बाबा कोई भी मतलब बैलेंस रखता था हर बच्चे का, और जो उसके अंदर विशेषताएं होती थी ना, वो उस कहता था बस प्रैक्टिकल मैं करूं, इसकी प्रैक्टिकल इससे कराऊं, ताकि इसको खुशी होगी और बिजी भी रहेगा। तो ये दोनों बातें बाबा फौरन करा लेते थे, जिसमें जो कला होती थी उसको वहीं खड़ा करता था और वो ही समझो उसमें बिजी कर देता था। तो फिर उसके बाद कहता है कि बच्ची वो बच्ची को बुलाओ इधर मेरे कमरे में, देखो तुमको रोज बाबा तीनों टाइम खाना खाता है, तीनों टाइम तुमको बाबा के पास पहुंचना है, जो बाबा खाना खाता है वो तुमको खा के जरूर जाना है। तो बाबा अपने हाथों से ग्राई बना करके मेरे मुंह में डालता था, फिर खाता था खुद, फिर मेरे मुंह में डालता था, फिर खाता था, ऐसे करके समझो पाला। ये ट्रेनिंग सेक्शन बना ना, तो इसको छीलने के लिए ड्यूटी लगी मेरी, माना जितनी भी खिड़कियां हैं उसको छीलना है। सीमेंट लग गया, मिस्त्रियों ने तो बना डाला नीचे के फर्श में सीमेंट, वो पार्टी आनी थी तो खूब छीला, इसको छील करके इसको खूब अच्छी तरह सजाया, फिर खटियाएं बनाई, दुनिया भर की ड्यूटियां की, कोई ऐसी ड्यूटी नहीं है वो, मैं पहले भी आपको बता के आई, धोबी घाट भी संभाला, प्रेस का डिपार्टमेंट भी संभाला, मतलब सब तरफ से। तो फिर क्या हुआ उसके बाद, फिर बाबा के पास कोई समझो गिफ्ट ले आता था ना, तो बाबा जब मालिश कराते थे ना, तो बाबा लुंगी पहनते थे कलर वाली, और बाबा के लिए तो अच्छी चीज लाते थे बहुत, उस समय कपड़ा भी सूती, इतना सुंदर रेशम होता था, सूती चमकता रहता था। तो मुझे बुलाता था, क्या ये सामने जो स्कर्ट की ड्रेस की ये लाइन है ना, तो मुझे ऐसी ड्रेसें पहनाई बाबा ने, तो कहता है बच्ची देखो ये मेरे लिए कपड़ा आया, मैं इसकी तुझे स्कर्ट बनवा दूं। तो मैं बोलती कुछ नहीं थी, मैं कहती थी बाबा जो पिलाए जो खिलाए जैसे रखे, बस मैं बाबा को सरेंडर हूँ, और मैं किसी को सरेंडर नहीं हूँ, बाबा को सरेंडर हूँ। तो बाबा को बहुत ध्यान रहता था, इतना इतना अच्छा। फिर ये मेरी स्कर्ट इसकी बनवाई, फिर पहाड़ों पे ले जाते थे, बहुत दूर दूर हम लोग जाते थे, लेकिन जब वॉकिंग करते थे ना, तो कहता था चप्पल का भी आवाज नहीं होना चाहिए, सिखाता था कैसे चलना है। आज मनुष्य दूर से आएगा, आ रहा है भंडारे से, लेकिन सुनाई यहाँ पड़ रहा है उसका कि वो आ रहा है उधर से, लेकिन बाबा के टाइम में कोई घूमने जावे और आवाज आवे चप्पल का, बिल्कुल नहीं, साइलेंस एकदम, जरा भी। बाबा कहता था जैसे पादरी लोग चलते हैं ना साइलेंस से, ऐसे तुम बच्चों को साइलेंस का वो अनुभव करके और आप जाओ वॉकिंग करने, देखो कितना आनंद आएगा, कितने माइल चले जाओगे पता भी नहीं पड़ेगा कि मैं कहाँ पहुंच गया हूँ, ऐसा अनुभव करोगे। फिर इस तरीके से जैसे समझो खाना बनाना सिखाया मुझे, खास आए मेरे पास कमरे में, कहा बच्ची तुम बाबा के लिए खाना बनाओगी? मैंने कहा बाबा मुझे आता तो नहीं। कहा नहीं मैं तुम्हें सिखाऊंगा। तो फिर मुझे बताया कि बच्ची तुम नमक कम डालना, नमक डाल के फिर निकालना बड़ा मुश्किल है, और अगर डाल सकते हैं ऊपर से कम होगा, अगर ज्यादा नमक होगा तो खाने वाले को बाबा बिल्कुल याद नहीं रहेगा, और उसके लिए घृणा नफरत जिसने बनाया उसके लिए यही चलता रहेगा अंदर, कैसा खाना बनाया है, किसी काम का नहीं बनाया, यानी पूरा टाइम जैसे कि उसकी बुद्धि उस इंसान में ही लटकी रहेगी। तो कहे ये योग युक्त खाना नहीं है, हमेशा बाबा भोजन के लिए इतनी ट्रेनिंग देता था, बात मत पूछो। कहता था भंडारे में घुसे और देख, अगर किसी ने भोजन बनाने वाले से बात की तो बाबा फौरन पहुंच जाता था। कहता था कि ये क्यों बोल रहा है, इसका क्या कनेक्शन है यार। अब बच्ची मैं तुमको कल से चार दीवारों पे चार वो पत्ते जैसे होते हैं ना, इधर ये चौड़े पत्ते जो अपने जिसपे बाबा भोग देते थे, इसी ढंग का डिजाइन का पत्ता निकलवा, हाँ केले का नहीं, हाँ माना जिसमें इतना लिखा होता था शिव बाबा याद है बस। तो बाबा ने वो लकड़ी के बनवाए, खास लकड़ी के स्टैंड की तरह बना करके, और दीवार चार कोनों में, चार दीवारों में वो चार लगवा के दिए मुझे। और फिर उसके बाद क्योंकि मैं जो किचन को सजाया ना बाबा के, वो ऐसा सजाया समझो, इधर तो मैंने नलका लगवाया और इधर फिर मैंने समझो कि अलमारी बर्तनों की रखवाई, फिर इधर समझो मैंने टेबल लगवाया, फिर इधर समझो दरवाजा है ऊपर, तो चारों कोनों में समझो कि बाबा ने, तो जब मैं वहां जाती थी तो सामने से मुझे दिखाई देवे, तो मैं अपने से क्वेश्चन करूं कि मैं शिव बाबा को याद करके ये शिव बाबा का भोजन बना रही हूं, तो जैसे मुझे फौरन वो जैसे फौरन बाबा याद आ जाता, तो जैसे अटेंशन रहता था। अभी तो क्या होता है कि कोई भी खाना बनाने, एक सब्जी बनाने जाएगा, दस लोग वहाँ खड़े हो जाएंगे और वो सारा जैसे कि क्या बोलेंगे, कुछ कह नहीं सकते, उन शब्दों को रिपीट भी नहीं कर सकते, लेकिन बाबा पसंद नहीं बिल्कुल करते थे। कहते थे खाना हमेशा एक शांति से, शिव बाबा की याद से खाओ और शिव बाबा की याद में बनाओ, क्योंकि अन्न का मन के ऊपर बहुत बड़ा असर होता है, बहुत बड़ा, क्योंकि बुद्धि सोचने की नहीं रहती है कि क्या मैं सोच रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, वो उसकी बुद्धि भी, वो खाना अगर हम इस ढंग का खाते हैं तो बुद्धि भी वैसी ही बन जाती है, वो अपने को बना नहीं पाता है। अगर राइट भी उसको बोला जाएगा ना, वो समझने की कोशिश भी नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि उसको अपने उसमें बनाने का अटेंशन नहीं है। तो बाबा हमेशा कहते थे मन है घोड़ा, मन इतना घोड़ा हो चुका है, बेलगाम घोड़ा हो चुका है, और बुद्धि है उसकी जजमेंट करने वाली, राइट क्या है रॉन्ग का है। मन तो आपको गलत भी बताएगा, सही भी बताएगा, गलत तो बहुत ज्यादा बताएगा, सही कम बताएगा, लेकिन बुद्धि, आप बुद्धि में ज्ञान है तो वो सही बता देगी और जजमेंट दे देगी। अब उसको प्रैक्टिकल में करना है, वो फिर हमें लेजी नहीं बनना है। तो इसलिए बाबा को आलस भी बिल्कुल पसंद नहीं था, कहता था आलसी कभी भी अपने को नहीं बनाना चाहिए, जब आलसी बनेंगे तो हम अपने आप को अंदर अपने लिए, जो बाबा घड़ी घड़ी हमको कहते हैं ना स्वराज अधिकारी, स्वराज अधिकारी, तो स्वराज अधिकारी का मतलब क्या है, दूसरों पे राज नहीं करना, अपने ऊपर राज करना, माना अपना टीचर। जैसे आपने समझो सुबह खटिया छोड़ी, उसके बाद समझो आपका स्कूल चालू हो गया, चारपाई छोड़ते ही आपका स्कूल चालू हो गया, क्योंकि आप कितने लोगों के साथ कनेक्शन, रास्ते में, उठने में, नहाने में, धोने में, खटिया से इधर चलने में, क्लास में, नाश्ते पे, सब जगह आपके साथ, आप नहीं चाहोगे लेकिन आपको गुजरना ही पड़ेगा क्योंकि संख्या बहुत है। उस समय तो संख्या थी नहीं ना, उस समय तो ऐसी बातें थी नहीं। आज देखो टोकरे में बर्तन थोड़े से होते हैं तो प्यार से पोंछ के रखेंगे, और ज्यादा होंगे धड़ 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 होगा आवाज, वो वहां का यहाँ तक पहुंचेगा। तो आज लोगों की भी इतनी संख्या हो चुकी है जो कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। इसलिए बाबा हमेशा कहते एकांतवासी बनो, बीच बीच में सारे दिन में कुछ एकांत से निकल, कुछ इस शोर शराबे के आवाजों से निकल करके एकांत में चले जाओ, कुछ अपने लिए जमा करो, जमा का खाता बनाओ, ऐसे बाबा हमेशा कहते थे। तो जमा का खाता हमारा जमा होता रहेगा, क्योंकि हमको बाबा ने 24 घंटे दिए हैं, और उसमें भी 24 घंटे में हमारे कई ऐसे घंटे हैं जो हम अपने शरीर के ऊपर ही लगाते हैं, कुछ घंटे हैं जो हम बाबा की याद में सेवा में दे सकते हैं। तो सेवा भी अनेकानेक प्रकार की है। समझो आपकी सब्जी काटने की है, समझो आपकी रोटी बनाने की है, समझो आपको बाहर की सेवा है, तो ये सेवा है। सब थोड़ी एक ही जगह सेवा करेंगे, बाबा ने सबको अलग अलग सेवा दी है, सब सेवक, हम सब सेवक राम है, ये समझ लो। हम मेवा वाले नहीं है, सेवा वाले हैं। हम इस समय समझो वनवा में है, बाबा कहता है इस समय तुम वैरागी हो, वनवा में बैठे हुए हो, फिर धीरे धीरे मैं तुमको सजाऊंगा, सब जेवरों से सजाऊंगा। तो वो सजाना भी अभी ही है, वो अंदर के जेवर अभी पहनने हैं, बाहर के अभी नहीं पहनने हैं। उसके लिए बाबा कहता है तुम वनवा में हो, क्योंकि आज की दुनिया में तो सोना पहन के कोई जा नहीं सकता ना, जो जाएगा वो ही फंसेगा। तो इसलिए बाबा कहता है कि इस दुनिया में तुम जितने त्यागी बनोगे उतना तुम्हारा भाग्य ऊंचा बनता जाएगा। तो अभी हमें गुणों से शौकार बनना है, ज्ञान के भूषणों से शौकार बनना है, ज्ञान धन को अपने जीवन में लेना है। ज्ञान धन होगा ना, सुबह सुबह जब उठते हैं 5:45 वाले गाने में सुनते हैं ना रोज, ज्ञान धन है क्या, उसमें वो ही बताया हुआ है कि सारे जितने भी धन है वो सब नीचे आ जाएंगे, वो ज्ञान धन सबसे ऊंचा है। तो इस ज्ञान धन से वो कभी गरीब नहीं दिखाई देगा, बाबा उसको सदा शौकार रखेंगे। तो ये हम एक नशा रखेंगे ना अपने जीवन में, और खुशी, खुशी जैसी खुराक नहीं है, वो बाबा हमेशा कहते थे चिंता जैसा मर्ज नहीं। तो चिंता तो कभी भी जिंदगी में नहीं लानी, सदा खुश। हमारा बाबा सदा खुश रहा तो हम भी खुश रहे ना, हमें काहे की चिंता किसकी करनी है, कोई चिंता नहीं। शिक्षा कोई बाबा का घर है, हम बाबा के बच्चे हैं, बाबा का घर मेरा घर है, कहाँ कोई चीज वेस्ट जा रही है, तो बाबा ने सिखाया है ना, बाबा ने खुद करके सिखाया है। आज समझो बर्तन बीच में पड़े हैं, पैरों में पड़े हैं, चम्मच पड़ा है, ग्लास पड़ा है, अगर मैंने नीचे झुक करके उसको उठा लिया या आपने उठा लिया, तीसरे व्यक्ति ने आपके ऊपर मजाक किया, हंसी की, तो उसका तो सारा कट गया, जिसने मजाक किया हंसी की उसका तो वो समझो जीरो में नंबर में आ गया उस समय, और आपका भाग्य ऊंचा हो गया। तो ये बाबा हमेशा कहते थे कोई गलत रास्ता बताता है उस तरफ देखते हुए भी ना देखो, सुनते हुए भी ना सुनो, ये हमेशा सोचते हुए भी नहीं सोचो, कोई सोचने के लिए भी दे ना, क्योंकि हमारा घर है ना, हम किसी भी तरीके से अपना भाग्य बना सकते। आज समझो कोई कुर्सियां ऐसे मैदान में छोड़ के चला गया, वास्तव में वो डिसिप्लिन नहीं है, जहां उसकी सेटिंग है वहां हम रख रहे हैं। बाबा सिखाते थे, कहते थे बच्चे बैठे हो, अब ये संदली मैं जिस पे बैठी हूँ ये मैं उठा के वहां रख दूं, और सुबह कोई आके देखे कि ये कौन है, पहले तो वो ही बोलेगा ये कौन है, ये किसने ऐसा रखा है। तो ये डिसिप्लिन नहीं है ना। तो बाबा हमेशा कहता था एक डिसिप्लिन, एक कभी अलबेले नहीं रहना, और सदा एवर रेडी। ये 3-4 बाबा की बातें सारे दिन में काम आती है, और ये हम अपने जीवन में प्रैक्टिकल लेते हैं। भले कोई कितना भी मजाक करे, कितनी भी हंसी करे, उसका काम है मजाक करने का उसका, क्योंकि वो नहीं करेगा ना, उसको खाली मजाक ही करना है, उसको भाग्य बनाना ही नहीं है, बनाना मुझे है, क्योंकि मुझे बाबा स्वर्ग ले जा रहा है, वो थोड़ी मुझे ले जाएगा, मुझे बाबा ले जा रहा है। तो मैं करूंगी मेरा भाग्य, मैं करूंगी तो मैं तंदुरुस्त रहूंगी, अगर मैं नहीं करूंगी तो मैं रोगी बनती जाऊंगी। तो ये बातें बहुत छोटी छोटी हैं, इतनी इतनी सी, जो हमारे जीवन में हमें एकदम हमारी आत्मा को कंचन बनाती है। तो इस तरीके से हम बाबा के साथ समझो कि शिव बाबा का भी बहुत अनुभव किया। जब बाबा देखते थे आंखों से, तो कई बारी बाबा को हम ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर से देखते थे, जैसे अभी ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर देख रहा है मुझे, ये सारे विश्व का बापू जी है। अब महात्मा गांधी को तो कभी हमने नाम भी नहीं सुना, छोटी आ गई मुझे पता भी नहीं था कौन है महात्मा गांधी, मैं उनको बाबा को ही सब समझती थी उस टाइम, मैं कहती थी ये तो बड़ा बड़ा सारे विश्व का बापू जी है, इतनी तो देखो चाल ढाल, देखो क्या रॉयल है, सिंपल है ड्रेस में, लेकिन चल कैसे रहा है जैसे एक बड़ा राजा चल रहा है, क्या देख रहा है, क्या उसके अंदर गरीबी दिखाई नहीं दे रही है, बड़ा अमीर होके चल रहा है नहीं बिन वो कहते हैं सिंधी में छा चंदन अच्छा कपड़ा खीसा खाली, वही था बाबा का, सफेद कपड़े जेब खाली तो भी देखो राजा की तरह चल रहा था। तो देखते रहते थे बस, आनंद लेते रहते थे। फिर कभी कभी फिर बाबा देखो सारे दिन में अनेक रूप बाबा के, वही गाने की बात आ गई ना, तो वो रूप सारे मेरे सामने आ गए। कभी कभी देखो तो बाबा बाप का रूप है, कभी देखो बाबा धर्मराज का रूप है, कभी देखो बाबा धर्मराज के रूप में ये नहीं हो ऐसे करके चिल्लाना, यो करना ऐसे करना, आंखें बड़ी करना या मोटी करना मूछे, ये सब बाबा की चालें नहीं थी। बाबा के अंदर सब दिव्यता थी, बड़ी दिव्यता थी, बड़ा वो प्यार था, यानी समझो निस्वार्थ प्यार था उसके अंदर। इसको देखो उसको देखे, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे बच्चे आए हैं, मीठे बच्चे, मीठे हैं नहीं खट्टे हैं, लेकिन मीठे मीठे कह करके खटास निकाल देता था, तो इसलिए उसके मुख से निकलता नहीं था तो बाबा मुझे कभी कहे कि खट्टे हैं नहीं, भले वो खट्टा भी है कड़वा भी है लेकिन फिर भी उसको कहते मीठी बच्ची इधर आओ, मीठा बच्चा इधर आओ, इधर आओ मीठे बच्चे, ये काम करना है अभी, ऐसे करना है, क्या करना है अभी, इसको ऐसे करना है, ऐसे करना है, फिर तुम दो चार को इकट्ठा करो, ऐसे करो। जैसे हमारी दादी भी हमेशा ऐसे ही करती, वो भी साथ साथ रह के थोड़ा बहुत सीखी, तो इस तरीके से ऐसे अनुभव तो बहुत सारे हैं, लेकिन समय भी देखना पड़ता है। मेरा ये अटेंशन रहता है, जैसे बाबा 18 जनवरी में जब उन्होंने देह छोड़ी थी ना, तो 16 को ये क्या अपने 12 तारीख को प्रकाशमणि दादी यहाँ आई थी, बॉम्बे में रहती थी वो हमेशा, तो थोड़े समय के लिए बाबा ने उनको यहाँ रखा था, तो हमारी मनमोहिनी दीदी को टूर पे भेजा था एक मास के लिए, लेकिन वो एक मास रही नहीं, 15 दिन रही, 15 दिन के बाद ये बाबा ने देह छोड़ दी, तो फिर उसको जल्दी आना पड़ा, तो उस 15 दिन में बाबा 15 दिन के लिए दादी को इधर रखा। फिर दादी को कहा नहीं बच्ची तुम भी भले अपने सेंटर का चक्कर बॉम्बे में लगा के आओ गाम देवी में, बाबा आप ही संभाल लेगा, तो वो गई। फिर वो 8 दिन के बाद फिर आ गई तो वो हांगकांग का एक परिवार था उनको लेके आई, तो वो सावित्री और अपने दादा राम है ना, वीना है और ये जानकी, ये सब लेके आए, तो वो लोग 12 को निकल के 13 को पहुंचे, तो दादी ने कहा ऐसे ऐसे कहते आप भी आओ, तो दादी तो हर बात में बाबा से पूछती थी, तो वो उनके साथ यहाँ आई। फिर वो लोग 16 को गए, तो जब 13 को आए तो बाबा ने उनके साथ गुरुवार को समझो कि 15 को उन्होंने समझो बाबा ने उनके साथ ब्रह्मा भोजन किया, लेकिन ब्रह्मा भोजन वो छोटा सा परिवार था ना, तो उनको भाषणा देने के लिए ये जो आप देखते हो ना जहाँ पर ये अपना रिजर्वेशन ऑफिस है और इधर ये जो आपको ये लास्ट प्रॉपर्टी वगैरह जमा कराते हैं, ये इसी पैसेज में बाबा ने फिर हमने समझो कि टेबल लगा करके बाबा के साथ उनको ब्रह्मा भोजन खिलाया। फिर वो लोग 16 को चले गए, दादी को भी उनके साथ जाना था। फिर दादी को सुबह ही जैसे दादी भोग पूरा हुआ तो दादी को मतलब अच्छा हुई कि मैं भी साथ में चलूं, तो मैं भी साथ में थी, दादी हम लोग बाबा के साथ कमरे में बाबा के गए, तो बाबा गद्दी पे बैठे हुए थे, तो 16 तारीख की बात है, तो बाबा कहते हैं, दादी कहती है बाबा मेरा क्या प्रोग्राम है, ये आज जा रहे हैं और मैं भी जाऊं, तो बाबा कहते नहीं बच्ची तुम 2 दिन यहाँ रुक जाओ, उसके बाद देखते उसके बाद प्रोग्राम बनाना, ऐसे करके बाबा ने बोला। हम भी खड़े थे, फिर उसके बाद दादी जो है अपना कैंसल कर दिया, उन लोगों को भेज दिया, वो दिन में जैसे 2 बजे यहाँ से निकलते हैं खाना खा के और गए। फिर उसके बाद शाम के टाइम समझो कि बाबा को थोड़ा सा हल्का सा पेन हुआ 16 तारीख, फिर ठीक हो गया बाबा, फिर जल्दी ओके हो जाते थे और बाबा जल्दी डॉक्टर को बुलाते नहीं थे। फिर 17 को हुआ, फिर 18 को भी हुआ पेन, वैसे 3 दिन थोड़ा थोड़ा करके, फिर 18 को जो हुआ ना वो समझो कि उस दिन 17 को समझो बाबा भोली के पास गए, तो भोली 16 को गए, तो भोली कहती है बाबा आप कल आए नहीं थे तो कहा बच्ची मैं जरूर आऊंगा, रोज आऊंगा ऐसे करके। फिर 17 को बाबा जैसे गए तो बाबा कहते हैं देखो बच्ची तुमने उलहना दिया ना, अब मैं फिर आया हूँ मीठी बच्ची तेरे पास। तो कहा ठीक है, फिर भोली जैसे खुश बहुत बाबा को पकड़ लिया मिली। फिर उसके बाद हम समझो कि बाबा के साथ साथ कमरे में झोपड़ी में आए। फिर 18 को समझो सुबह पूरे दिन की दिनचर्या बाबा की जैसी चलती है वैसी ही चली, बहुत अच्छी। और शाम को पोस्ट भी लिखी, बाबा की उंगली भी सूज गई और हम खड़े थे वहां, तो बाबा दादी कहती बाबा बस करो अभी आपकी उंगली भी सूज गई, कहीं नहीं मुझे आज सब बच्चों को आज ही रिस्पॉन्स देने हैं 18 तारीख शाम को 5 बजे से लेके 7 बजे तक। नहीं तो शाम को बाबा कभी पोस्ट नहीं लिखते थे, उस दिन बाबा ने 2 घंटा बैठ के शाम को पोस्ट लिखी। और पूरा दिन जैसे नौकरों को भी आशीर्वाद दिया, फिर मेरे साथ वॉकिंग किया, ईशु दादी के साथ वॉकिंग किया, फिर रात को मेरे साथ, फिर यहाँ से आधा घंटा पहले गेट से लेके, ठंड बहुत थी, मेरे साथ ही काम मीठी बच्ची आओ हम दोनों वॉकिंग करते पैदल करते, तो मेरा हाथ पकड़ा। फिर उसके बाद ईशु आई, फिर कहा बच्ची तुम बैल बजाओ और सबको बोल दो बाबा आज जल्दी। तो उस दिन बाबा 8:15 बजे आए, ठंडी में बाबा हमेशा 9 बजे आते थे और क्लास 8:30 से 9:30 शुरू खत्म हो जाता था। 9 बजे आए, फिर मुझे कहा कि फिर मैं इधर आकर के बैठी, इस तरफ यहाँ बैठी तो बाबा के यहाँ थोड़े से दांत 2 थे बनावटी, बाकी सारे अपने थे। तो मैं संदेशी दादी मेरे साथ बैठी थी, मैंने उनको कहा दादी आज बाबा का ये हिस्सा ढीला ढीला लग रहा है, मुझे लगता है बाबा भूल गए है दांत। तुम्हें बहुत धीरे से बोला, लास्ट दिन तक बाबा की नजर भी इतनी अच्छी, दांत भी अपने और स्ट्रेट होके, जैसे हम अभी बुढ़े हो गए हैं, हमको पीछे भी सहारा चाहिए, पैरों में भी सहारा चाहिए, सब जगह सहारा चाहिए, तो उनको ये सब सहारा नहीं, क्योंकि शिव बाबा उसमें प्रवेश था ना, उसकी भी जैसे अभी अपनी दादी गुलजार के शिव बाबा आता है तो सारी उसकी शक्ति उसको अपनी भर देता है, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है जाने में भी और आने में, कोई तकलीफ नहीं होती है। इसी तरीके से फिर मैं दौड़ी दौड़ी गई, फिर बाबा आकर के पहना का मीठी बच्ची, बाबा बिल्कुल ठीक है, कोई बाबा को तकलीफ नहीं हो रही है, फिर मैं ले आई मतलब। लेकिन बाबा ने जो महावाक्य उच्चारण किए 8:15 से 9:15 क्या थे, बहुत अच्छे एकदम, जरा भी मन चित्त किसी को भी नहीं हो सकता है कि बाबा आज शरीर छोड़ेंगे। बस ऐसे करते समझो 8:45 बजे यहाँ से झुके, इधर पूरा झुके ऐसे झुक करके, और कहा अच्छा आज मैं सब बच्चों से छुट्टी लेता हूँ। तो भी वर्ड्स को इतना ध्यान नहीं दिया, हम तो उसी में खो जाते थे बस। फिर बाबा के साथ उस दिन दादी प्रकाशमणि भी साथ में चली गई, वैसे वो उस दिन जाती नहीं, मतलब बहुत करके अपने कमरे में आ जाती थी। फिर मैं बेड वेड उनका बना रही थी, प्रकाशमणि दादी का अपना, तो इतने में भोली दादी मुझे कहती है कि वीनू आज बाबा की तबीयत बहुत खराब हो गई है, चलो चलो। तो मैं भागी बिस्तरा विस्तरा सब छोड़ के, तो देखा वहाँ बाबा, मैं बाबा के तकिए की तरफ खड़ी हूँ और इधर दादी प्रकाशमणि खड़ी है और इधर वो संदेशी दादी है, इधर किशनी दादी है, बस हम ये 4-5 जने थे। लच्छू तो आ जा रही थी इधर से उधर, बैगे ले आना वो ले आना ऐसे करके। फिर हमको बोला गया कि तुम जल्दी जाओ भंडारे से अजवान ले आओ, तो अजवान लाके मैंने बाबा के पैरों में घसी, हाथों में घसी, बिस्तरे पे डाली फटाफट, और लच्छू बैगे ले आई फटाफट रखी हमने छोटी 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 4-5 बैगे, फिर रजाई डाली ये किया। लेकिन बाबा तो समझो दादी का हाथ पकड़ते ही बस दादी पूछ रही है बाबा क्या हो रहा है, कहा आज बच्ची जो दर्द है ना सहन करने से बाहर है बस, और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस ऐसे करके। फिर पीछे से थोड़ा फिर संदेशी दादी ने अपनी गोद में ले लिया, फिर उसके बाद बाबा को लेटा दिया। अच्छा उस लेटाने के बाद गोद भी ले लिया, लेकिन एक व्यक्ति नहीं बोल रहा है कि बाबा गया है, हर एक समझ रहा है बाबा है, बाबा है, सब अपने अपना जोर लगाए जा रहे। डॉक्टर को बुलाया, वो डॉक्टर अपना फिर बाबूजी को ऊपर चढ़ा के वो छाती को दबाने लगे ऐसे ऐसे करके बाबा की। फिर वो डॉक्टर गया लेडी डॉक्टर को बुलाने, फिर वो लेडी डॉक्टर इतनी बड़ी ऑक्सीजन ले आई, हम तो उस समय पहली बार ये सब देख रहे हूँ, ये क्या हो रहा है, मेरे लिए भी जैसे एक आश्चर्य ही लग रहा था। फिर उसने तीन इंजेक्शन लगाए छाती में, एक दो तीन। फिर उसके बाद कहती है, आपके अभी पिताश्री जी है ना, अभी ये गुजर चुके हैं, और अभी आप इनको जो है ना बिल्कुल ये सब बेड वेड सब निकाल दीजिए और इनको लूज रखे एकदम बॉडी को, क्योंकि आपको तीन चार दिन तो रखनी पड़ेंगी, आपका ये मेन स्थान है, आपके आश्रम है, आएंगे देखेंगे, तो इसलिए आप ऐसा करिए। फिर हमने रात ही रात में सारा कमरा खाली करके और बाबा को ऐसे ही फिर सुबह समझो उन बाबा को जमीन में ही रखा, पलंग भी निकाल दिया था सब। फिर पूरी भट्टी वगैरह चली, फिर यहाँ उस समय भाई तो थे नहीं अपने पास, फिर रमेश भाई आए उधर से, मंगूराम आए जयपुर से, फिर ये चार पांच भाई मिल गए, फिर इस हॉल में लाए बाबा को, फिर यहाँ रखा। मतलब चार दिन बाबा की बॉडी को, संडे को शाम को यहाँ ले आए थे, शनिवार रात को शरीर छोड़ा, संडे शाम को यहाँ ले आए, फिर मंगलवार 2 बजे फिर शांति स्तंभ पे। लेकिन पहले थोड़ा राउंड लगवाया, बाबा को खूब सजाया था, लेकिन इधर से कहीं से नहीं निकल पा रहे थे, यहाँ तो रखते भी नहीं थे, इस दरवाजे से कभी नहीं निकालते थे। सामने बड़ा दरवाजा था, ये दरवाजे खुलते हैं ना, इसके पीछे बड़ा दरवाजा था, वहां से बगीचे से पीछे से लाके फिर एम्बेसेडर कार के ऊपर बाबा की बॉडी को रख के, फिर थोड़ा सा न्यू टेरेस गार्डन तक बाबा को घुमा के फिर यहाँ ले आए। फिर रमेश भाई कहने लगे, वीनू बहन के कंधे पे तो जरूर बाबा को रखना है, तो फिर मेरे कंधे पे रखा वहां पर, फिर भोली दादी के कंधे पे रखा, फिर उसके बाद यहाँ पेड़ के नीचे ले आए, फिर यहाँ मुझे बिठाया, गुलाबाशी दी हाथ में, तो वो क्वीन मदर को आना था तो इसलिए लेट हो गया, पहले उसका नहीं आने का था, मना किया था, लेकिन वो कहने मैं आऊंगी, फिर इसलिए लेट हो गया। फिर 2 बजे फिर शाम को क्या हुआ, पहले पहले जब गुलजार दादी के शरीर में कोई मन चित नहीं था कि बाबा आएंगे, लेकिन निमंत्रण दिया इसी हॉल में ही गुलजार दादी को 7 बजे तैयार कर। गुलजार दादी हमारे पास सोमवार पहुंची सुबेरे बस भर करके दिल्ली से, तो वो सीधी बस यहाँ खड़ी की उसने, फिर यहाँ से सबको लाके ऐसे राउंड में खड़ा किया जो भी उनके साथ आए थे, तो वो देखती रही, बाबा का फेस इधर था, टांगे इधर थी, फिर ऐसे देखती रही। तो उसने फिर अपना अनुभव सुनाया कि जैसे बाबा आए हैं, आंखें खोली हैं, सबको देखा है बड़े ध्यान से, और जैसे मना काफी अच्छा क्लियर दिखाई दिया गुलजार दादी को, उस समय सबको दृष्टि दी जो भी थे। फिर उसके बाद समझो कि भोग की सारी तैयारी की गई, फिर भोग जब यहाँ आया तो दादी और दीदी आगे बिठाया था, अपनी दीदी को आगे बिठाया था और दादी को यहाँ पर, क्योंकि उस समय हमारे इस हॉल के अंदर 300 लोग बैठ सकते थे, उस समय ये हॉल समझो कुछ नहीं था, इसके अंदर ये सोफे वगैरह कुछ नहीं थे, सब जमीन में ही बैठते थे, और बाबा की संदली थोड़ी और पीछे थी, तो यहाँ तक समझो दादियां बैठी, फिर हम लोग भी इधर बैठे। फिर उसके बाद बीच में भोग का टेबल था, तो सामने से जैसे उन्होंने निमंत्रण दिया दीदी ने दादी ने कि बाबा आए, इतनी बड़ी फुलवाड़ी आई है, बाहर भी ये सब दरवाजे वगैरह खोल दिए थे, बाहर तक लोग बैठे थे, तो कहा इस तरीके से आके मिलेंगे तो सब खुश होंगे, सबको उमंग आएगा, ये लोगों के मनों में बहुत हलचल चल रही है, क्या होगा आश्रम का, क्या होगा, अब ये तो ठप हो जाएगा आश्रम, अब ये चलेगा नहीं, इसमें अभी कोई दम नहीं रहा, ऐसे ऐसे मतलब लोग की वो वाइब्रेशन हाव भाव कुछ कुछ लोगों के थे, सबके नहीं थे। तो जैसे ही समझो बाबा आए, क्या उस समय का माहौल था, वो देखने जैसा माहौल था, बहुत आनंदित माहौल था, और बाबा ने जो स्पीड से वो सारे जितने भी अंदर व्यर्थ जो विचार चल रहे थे लोगों को, वो कहाँ उड़ गए हवा में पता ही नहीं पड़ा, कैसे खो गए। फिर मैं समझती हूँ 6-7 महीने तक बाबा रेगुलर आया, रेगुलर पूरी पूरी रात आता था, सुबह 9 बजे तक यहाँ से उठता था, कभी 10 भी बज जाता था, कभी 11 भी बज जाता था। फिर उसके बाद धीरे 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 विधि चेंज कर दी, कहा ये तो लोग ना नहा रहे हैं, ना सब्जी कट रही है, ना नाश्ता बन रहा है, लोग तो यहीं मरे हुए हैं, सब हिलते ही नहीं है। तो फिर बाबा ने धीरे धीरे शाम का टाइम बना दिया 6:30 बजे का, कि सारा दिन खा पी के सो के नहा के फ्रेश होके आके बैठेंगे, फिर रात में समझो जल्दी पूरा करेंगे, तो ऐसा हो जाता। तो कुछ दिन सुबेरे 6:30 बजे शुरू किया, उसमें गड़बड़ हो गई, तो वो थोड़ा दिन चला, फिर चल नहीं पाया, वो बंद कर दिया। तो इस तरीके से मतलब फिर तो भगवान ने अपना चमत्कार ऐसा दिखा दिया, जो वही जो साकार में बोल के गए ना कि बच्चे बहुत आएंगे, मकान बनते जाएंगे, बनाते रहोगे, बच्चे बनते ही रहेंगे, अंत तक बनते रहेंगे, जब तक विनाश नहीं आएगा, वही चाल चल रहे अभी प्रैक्टिकल में। ओम शांति।